एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथ सार में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतरने वाले हैं जो बाहर से जितनी चमकीली है, अंदर से उतनी ही कह सकते हैं अंधेरी है।
हाँ, हम बात कर रहे हैं लियान मोरियार्टी के बहुत ही मशहूर नॉवेल बिग लिटिल लाइज की।
ये टाइटल ही अपने आप में कितना कुछ कह देता है ना, बड़े छोटे झूठ।
बिल्कुल, वो झूठ जो हम दूसरों से बोलते हैं और शायद उससे भी ज्यादा वो झूठ जो हम खुद से बोलते हैं।
सही कहा। और मोरियार्टी की यही तो खासियत है, उनकी लिखने की शैली को लोग सबर्बन नॉयर भी कहते हैं।
मतलब ऐसी कहानियां जो हमारे आसपास की दुनिया में ही छिपी होती हैं, वो खूबसूरत घर, वो परफेक्ट परिवार
और उनके पीछे का सच, वो रोजमर्रा की जिंदगी से ही एक ऐसा थ्रिलर बना देती हैं कि आप हैरान रह जाएं।
और इस कहानी का मंच है ऑस्ट्रेलिया का एक काल्पनिक तटीय शहर पिरविवी। सोचिए, समंदर किनारे बसे खूबसूरत घर, सफल लोग,
सब कुछ एकदम परफेक्ट। इतना परफेक्ट कि यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन जहां चमक सबसे ज्यादा होती है,
परछाइयां भी उतनी ही गहरी होती हैं।
और कहानी की शुरुआत ही एक धमाके से होती है, स्कूल की एक ट्रिविया नाइट पार्टी में किसी की मौत हो जाती है।
लेकिन रुकिए, ये कोई आम मर्डर मिस्ट्री नहीं है। यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन मरा
या किसने मारा।
हाँ, असली सवाल ये है कि उस रात तक पहुंचने के लिए कौन कौन से झूठ बोले गए, कौन से राज दफन हुए।
तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के तीन मुख्य किरदारों से, जिनकी जिंदगियां एक दूसरे से टकराती हैं।
कहानी के दिल में तीन औरतें हैं। पहली है मैडलिन मार्था मैकेंजी।
वो बहुत मजबूत हैं, मुंहफट हैं और अपने दोस्तों के लिए किसी से भी लड़ सकती हैं।
बिल्कुल। दूसरी है सेलेस्ट राइट। वो इतनी खूबसूरत हैं कि लोग बस देखते रह जाते हैं। अमीर पति, प्यारे जुड़वा बेटे, मतलब एक आदर्श जिंदगी।
और तो एक परिकथा जैसी लगती है।
हाँ, पर जिसके पन्ने अंदर से फटे हुए हैं।
और तीसरी है जेन चैपमैन,
एक नौजवान सिंगल मदर जो अपने अतीत का एक भारी बोझ लेकर इस शहर में नई नई आई है।
और इन तीनों की दोस्ती की शुरुआत भी कह सकते हैं बड़े ड्रामेटिक तरीके से होती है।
हाँ, स्कूल के पहले दिन एक छोटी सी घटना जो बाद में तूफान बन जाती है।
रिनाटा क्लाइन नाम की एक बहुत अमीर और कामयाब महिला की बेटी अमेबेला जेन के बेटे जिगी पर इल्जाम लगाती है
कि उसने उसका गला दबाने की कोशिश की।
सोचिए जरा, 5 साल के बच्चे पर इतना गंभीर आरोप। और बस
वहीं से पिरविवी की माओ के बीच एक जंग छिड़ जाती है।
एक तरफ रिनाटा है और दूसरी तरफ मैडलिन, जो फौरन जेन और जिगी के बचाव में खड़ी हो जाती है। सेलेस्ट भी उसका साथ देती है।
और यहीं से इन तीनों अजनबी औरतों के बीच दोस्ती की एक नींव पड़ती है, एक ऐसी दोस्ती जो उनकी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देती है।
लेकिन ये तो बस सतह है, स्कूल की पॉलिटिक्स, बच्चों की लड़ाइयाँ, असली कहानी तो बंद दरवाजों के पीछे चल रही है।
बिल्कुल, उपन्यास का सबसे बड़ा विषय ही यही है, दिखावा बनाम हकीकत। हर कोई एक परफेक्ट जिंदगी का मुखौटा पहने है।
और सेलेस्ट का मुखौटा तो शायद सबसे चमकदार है, लेकिन उसके पीछे का सच सबसे ज्यादा डरावना है।
हाँ, सेलेस्ट की कहानी तो दिल दहला देती है। बाहर से देखी तो उसका पति पैरी कितना आकर्षक है, अमीर है, दुनिया की नजर में एक परफेक्ट पति और पिता,
लेकिन यही इस उपन्यास का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक झूठ है।
सच तो ये है कि बंद दरवाजों के पीछे पैरी एक हिंसक जानवर है। वो सेलेस्ट को बेरहमी से मारता पीटता है।
सेलेस्ट घरेलू हिंसा का शिकार है और मोरियार्टी ने इसे इतनी बारीकी से लिखा है। वो सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं दिखाती, बल्कि वो मनोवैज्ञानिक जाल भी दिखाती हैं जिसमें सेलेस्ट फंसी हुई है।
हाँ, वो अपराध बोध, वो डर और ये सोचना कि शायद ही उसकी ही गलती है, बच्चों के लिए उसे ये सब सहना होगा।
और ये बात भी कितनी जरूरी है कि ये सब किसी भी समाज में हो सकता है। पिरविवी जैसे अमीर पढ़े लिखे समाज में तो इसे छुपाना और भी आसान हो जाता है,
क्योंकि कोई यकीन ही नहीं करना चाहता। लेकिन सेलेस्ट धीरे धीरे हिम्मत जुटाती है और चुपके से एक थेरेपिस्ट के पास जाने लगती है,
जहां उसे इस रिश्ते की सच्चाई का आईना दिखता है।
अब बात करते हैं जेन के राज की। उसका राज उसके बेटे जिगी के जन्म से जुड़ा है।
जिगी एक हिंसक हमले का नतीजा है और जेन को आज तक ये भी नहीं पता कि वो आदमी कौन था।
ये सदमा, ये ट्रॉमा एक परछाई की तरह हमेशा उसके साथ रहता है।
और इसीलिए जब जिगी पर हिंसा का आरोप लगता है तो जेन अंदर तक हिल जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं
जिगी में अपने बायोलॉजिकल पिता के गुण तो नहीं आ गए।
ये एक माँ का सबसे बड़ा डर है।
और फिर मैडलिन है, जो बाहर से सुपर कॉन्फिडेंट दिखती है, सबको संभालने वाली,
लेकिन वो भी अपनी लड़ाइयां लड़ रही है। उसकी अपनी बेटी उससे दूर हो रही है, उसका पहला पति अपनी नई पत्नी बोनी के साथ उसी शहर में रहता है।
मैरिटल अफेयर, एक ऐसा राज जो उसकी अपनी शादी को तबाह कर सकता है।
तो एक तरह से ये तीनों औरतें, जो ऊपर से कितनी अलग हैं, अंदर ही अंदर अपने अपने झूठ के बोझ तले दबी हुई हैं।
और उनकी दोस्ती उनके लिए एक सहारे की तरह बन जाती है।
मुझे तो मोरियार्टी का कहानी कहने का तरीका भी बहुत पसंद आया। वो जो दो टाइमलाइन एक साथ चलाती हैं, वो कमाल है।
हाँ, वो ग्रीक कोरस वाला आइडिया तो ब्रिलियंट है। एक तरफ तो कहानी 6 महीने पहले से शुरू होती है
और हमें धीरे धीरे ट्रिविया नाइट की तरफ ले जाती है,
और दूसरी तरफ हर चैप्टर के बीच में पुलिस की पूछताछ के छोटे छोटे हिस्से आते हैं, जिसमें शहर के दूसरे लोग, पेरेंट्स, टीचर्स,
अपनी अपनी राय दे रहे हैं, जो अक्सर गॉसिप और अफवाहों से भरी होती है।
इससे रहस्य और भी गहरा हो जाता है। आप लगातार अनुमान लगाते रहते हैं कि हुआ क्या था,
और ये तकनीक तनाव को धीरे 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 चरम पर ले जाती है।
और फिर आता है वो क्लाइमैक्स, ट्रिविया नाइट, जहां सारे राज, सारे झूठ, सारे तनाव एक साथ फटते हैं।
पहला धमाका होता है उस सच से जिसने ये पूरी कहानी शुरू की थी,
कि अमेबेला को कौन तंग कर रहा था।
पता चलता है कि वो जिगी नहीं था,
वो सेलेस्ट का बेटा मैक्स था।
सोचिए जेन को कितनी राहत मिली होगी, लेकिन सेलेस्ट के लिए, उसके लिए तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसे समझ आ गया कि उसका बेटा घर में अपने पिता के हिंसक व्यवहार की ही नकल कर रहा है।
ये दिखाता है कि घरेलू हिंसा का असर सिर्फ विक्टिम पर नहीं, पूरे परिवार पर होता है।
और जैसे ही ये सच सामने आता है, एक और उससे भी ज्यादा चौंकाए वाला सच खुलता है।
हाँ, जेन पहली बार सेलेस्ट के पति पैरी को करीब से देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं।
पैरी ही वो आदमी था,
वही आदमी जिसने सालों पहले उस पर हमला किया था।
इसका मतलब था कि जेन का बेटा जिगी और सेलेस्ट के बेटे सौतेले भाई हैं।
ये खुलासा तो कहानी के सारे समीकरण ही बदल देता है। और ठीक उसी वक्त
पैरी को पता चल जाता है कि सेलेस्ट उसे छोड़कर जाने की तैयारी कर रही है।
वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और इस बार सबके सामने सेलेस्ट पर हमला कर देता है।
और यहीं पर कहानी अपने अंतिम टकराव पर पहुंचती है। मैडलिन और जेन सेलेस्ट को बचाने के लिए दौड़ती हैं।
यहां तक कि रेनाटा, जो महीनों से जेन और मैडलिन की दुश्मन बनी हुई थी, वो भी सब कुछ भूलकर सेलेस्ट की मदद के लिए आगे आती है।
वो देखती है कि एक औरत को पीटा जा रहा है और वो बाकी सब भूल जाती है।
और तभी एंट्री होती है बोनी की, जो अब तक कहानी में एक साइड कैरेक्टर जैसी थी।
हमें पता चलता है कि बोनी खुद एक हिंसक पिता के साये में पली बड़ी है।
वो सेलेस्ट की चीख में अपने बचपन का दर्द सुनती है
और बिना एक पल सोचे वो आगे बढ़ती है और पूरी ताकत से पेरी को एक धक्का दे देती है।
पेरी बालकनी से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है।
उस रात के बाद ये पांचों औरतें, मैडलिन, सेलेस्ट, जेन, रेनाटा और बोनी, एक अनकहा समझौता करती हैं। दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। वे सब पुलिस को एक ही कहानी सुनाती हैं कि पेरी दुर्घटनावश गिर गया।
ये उनका साझा बड़ा छोटा झूठ बन जाता है, एक ऐसा झूठ जो उन्हें एक अटूट बंधन में बांध देता है।
और ये अंत उपन्यास के सबसे शक्तिशाली संदेश को सामने लाता है, औरतों की एकजुटता की ताकत।
कैसे दुश्मनी भी एक मजबूत रिश्ते में बदल सकती है जब महिलाएं एक दूसरे की रक्षा के लिए खड़ी होती हैं।
और ये उपन्यास झूठ की प्रकृति पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना?
क्या कोई झूठ कभी सही हो सकता है? क्या न्याय और किसी की सुरक्षा के लिए बोला गया झूठ जायज है?
मोरियार्टी इसका कोई आसान जवाब नहीं देती। वो ये फैसला हम पर छोड़ देती है।
शायद यही एक अच्छे साहित्य की निशानी है। वो हमें सोचने पर मजबूर करता है, असहज सवाल पूछता है,
और हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कभी भी सिर्फ काली या सफेद नहीं होती।
ये कहानी दिखाती है कि कैसे आदर्श दिखने वाली जिंदगियों के पीछे गहरा दर्द और संघर्ष छिपा हो सकता है।
और ये एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि गहरे अंधेरे के सामने एकजुटता, खासकर महिलाओं के बीच ताकत और मरहम का एक जबरदस्त स्रोत बन सकती है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य के एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।